आशिका इस वक्त एजेंसी में काम करने वाले एम्प्लॉयज के रेस्ट करने के लिए बनाए गए अपने प्राइवेट रूम में थी। वो अपने आप को लगातार काम में डुबोए रखने की कोशिश कर रही थी ताकि उसे अभिमान की याद ना आए। लेकिन लगातार काफी घंटे काम करने के बाद कैप्टन विराज को मजबूरी में आशिका की टेक लैब के सिस्टम को शटडाउन करना पड़ा। अगर आशिका इसी तरह लगातार काम करती रहती तो वो बीमार हो सकती थी या थकने की वजह से काम में गलती होने की गुंजाइश बढ़ सकती थी। बस यही सोचकर विराज ने ऐसा किया था। कमरे में आने के बाद आशिका सोने की कोशिश कर रही थी, पर अभिमान के बिना उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने गुस्से में अपना पिलो उठाकर फेंक दिया। कहाँ तुम्हें ये सोच रही थी कि अब मैं वापस उसके पास नहीं जाऊंगी ताकि हम दोनों की लाइफ कॉम्प्लिकेटेड ना बने, और यहाँ मुझे उसके बिना नींद भी नहीं आ रही। अजीब मुसीबत है, आशिका गुस्से में झुंझला उठी थी। देखा जाए तो यहाँ उसकी लाइफ अच्छी थी, ना तो किसी का डर था और ना ही उसे खुद को छुपाने के लिए किसी तरह के लेंसेज का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। वो जैसे चाहे कपड़े पहन सकती थी, और सबसे बड़ी बात कि उसे किसी का दिल जीतने के लिए अपने बर्ताव को बदलने की कोशिश नहीं करनी पड़ रही थी, ना यहाँ कोई उसकी पहचान को लेकर उसे ताने दे रहा था। मैं सीख जाऊंगी, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा पर हो जाएगा, वहां जाने से तो बेटर ही है। जरूर अब तक मिस्टर राजवंश ने डीएनए टेस्ट रिपोर्ट सबके सामने कर दी होगी, और आई एम डैम श्योर कि वो पॉजिटिव ही आई होगी। मुझे सिंघानिया फैमिली का हिस्सा बनने का कोई शौक नहीं है। मैं अभिमान के साथ भी रही तो वो मुझे इमोशनली टॉर्चर करेंगे कि मुझे अपनी फैमिली के पास आना चाहिए। नहीं, वहां जाना सही नहीं है, मैं अपनी लाइफ और करियर को इस तरह बर्बाद नहीं कर सकती। आशिका बस किसी भी हाल में खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसके वहां रुकने और अभिमान के पास वापस ना जाने का फैसला बिल्कुल सही था। आशिका सिर पकड़कर बैठी हुई थी। इस बीच गर्व भी रेस्ट करने के लिए अपने कमरे में जा रहा था। कमरों के आगे बने पैसेज की डिम लाइट के अलावा वहां बिल्कुल सन्नाटे और हर कमरे में से अंधेरे का एहसास हो रहा था। गर्व चलते हुए रुक गया था। उसने अपने दाएं तरफ मुड़कर देखा तो वो आशिका के कमरे के आगे खड़ा हुआ था। हालांकि उसे आशिका के रूम का नंबर नहीं पता था, लेकिन उस कमरे की लाइट ऑन थी। क्वाइट स्ट्रेंज, गर्व ने भौंय उठाकर कहा। पूरे दिन काम करने के बाद सब यही सोचते हैं कि वो मोमेंट कब आएगा जब हम सब रेस्ट करेंगे, और इस रूम की लाइट अभी भी ऑन है, जरूर इसमें आयश होगी। गर्व के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी, और वो अब आगे बढ़ने के बजाय आशिका के कमरे के आगे खड़ा हुआ था। उसने कमरे का दरवाजा खटखटाया। आशिका को लगा कि कैप्टन विराज या कोई सिक्योरिटी गार्ड होगा जो इस तरफ चेकिंग के लिए आया होगा। आशिका ने जल्दी से लाइट बंद कर दी। गर्व ने गहरी सांस ली और फिर से दरवाजा खटखटाते हुए कहा, डोंट वरी, सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, ओपन द डोर, ये मैं हूँ गर्व। फिर तो ये डोर कभी ओपन नहीं होगा, जाकर रेस्ट करो बजाय मेरे ऊपर टाइम वेस्ट करने के, आशिका ने तेज आवाज में जवाब दिया। लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है, सिर्फ 5 मिनट लूंगा, प्लीज डोर ओपन कर दो, गर्व ने विनती भरे स्वर में कहा। आशिका ने आंखें घुमाई और उठकर दरवाजा खोला। हालांकि गर्व के अंदर आने से पहले वो दरवाजे को रोककर खड़ी हो गई थी। उसने गर्व की तरफ घूरकर देखा और कहा, मुझे अच्छे से पता है तुम कौन सी बातें करना चाहते हो, मैं ऑलरेडी बहुत इरिटेटेड हूँ, सो प्लीज लीव मी अलोन। हाँ, इरिटेटेड तो नजर आ रही हो, और इतनी देर काम करोगी तो कोई भी पागल हो जाएगा, गर्व ने जवाब दिया। थैंक्स कि तुम मुझे समझते हो, और इतना काफी है, नाउ लीव, आशिका काफी बेरुखी से बोली। गर्व उसके चेहरे की तरफ गौर से देख रहा था। उसकी ये हरकत आशिका को और चिढ़ा रही थी। उसने गर्व के मुंह पर दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन गर्व ने उसे अपने हाथ से कसकर पकड़ लिया था। कुछ हुआ है तुम्हारी लाइफ में? मैंने नोटिस किया है कि तुम थोड़ी चेंज नजर आ रही हो। तुम्हारे असिस्टेंट को तुम्हारा यहाँ काम करना पसंद नहीं है, लेकिन उसने कभी हमें इस तरह इग्नोर नहीं किया। आखिरी बार उसने ये कहा था कि तुम अपनी लाइफ में खुश हो, ये काम और नहीं करना चाहती। क्या कोई और है तुम्हारी लाइफ में? गर्व ने काफी शांत लहजे में पूछा। मैं बस वर्ल्ड एक्सप्लोर करने में लगी हुई थी, सोचा बहुत काम कर लिया, अब थोड़ा घूम लिया जाए, और इसी वजह से रिहान ने तुम्हें मना किया होगा। रही बात मेरी लाइफ में किसी और के आने की, तो ये कभी नहीं होने वाला, मैं तुम्हें पहले ही मना कर चुकी हूँ, आशिका ने सफाई में कहा। तो फिर तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही? गर्व जल्दी से बोला। क्योंकि मेरा काम पेंडिंग है, और जब तक वो खत्म नहीं हो जाता मुझे नींद नहीं आती है। अब तुम्हारा इंटेरोगेशन खत्म हो गया हो तो जाओ यहाँ से, तुम मेरे गुस्से को बढ़ा रहे हो गर्व, आशिका ने हल्का चिढ़ते हुए कहा। गर्व ने ज्यादा कोई सवाल नहीं पूछा, उसने बस गुड नाइट विश किया और वहां से चला गया था। वहीं आशिका ने दरवाजा बंद किया और दरवाजे से टिककर एक गहरी सांस ली। अगर गलती से भी एजेंसी वालों को अभिमान के बारे में पता चला तो उनके मन में पहला डर यही आएगा कि मैं फ्यूचर में उनके लिए काम नहीं कर पाऊंगी। इस मामले में मुझे इन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, आशिका ने मन ही मन कहा। वो जाकर लेट गई थी और सोने की कोशिश करने लगी। वहीं गर्व भी अपने कमरे में आ गया था। तो तुम झूठ बोल रही हो। क्या तुम खुद अपने बदले हुए बिहेवियर को नोटिस नहीं कर पा रही हो ऐश? तुमने कभी किसी को इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं दी है और तुम इतना बात भी नहीं करती हो। कुछ तो जरूर हुआ है और मैं इसका पता लगा ही लूंगा, गर्व ने कॉन्फिडेंट वॉइस में कहा और अपने कमरे की लाइट्स बंद करके सोने चला गया। दूसरी तरफ अगली सुबह अभिमान ऑफिस पहुंचा और वो जाते ही सीधा रचित के पास गया। हालांकि रचित ने कल रात ही साफ कर दिया था कि वो आशिका से किसी तरह से कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों अभिमान के दिल में यही उम्मीद थी कि वो आशिका का पता लगा ही लेगा। रचित इस समय राघव के साथ था और उसे कल रात आए आशिका के मैसेज के बारे में बता रहा था। जैसे ही अभिमान ने ऑफिस में कदम रखा, रचित ने हल्के अंदाज में कहा, लो आ गया हमारा लवर बॉय। अभिमान ने उसकी तरफ आंखें घुमाई और अपनी चेयर पर आकर बैठ गया था। उसने सीधा रचित की तरफ देखा और कहा, ताने मारना बंद करो और मेरी हेल्प करो। ठीक है, तुम उसे मेरा मैसेज नहीं भेज सकते हो, पर जहां से वो मैसेज आया है उसकी लोकेशन तो निकाल ही सकते हो। मैं तुम्हें कल भी कॉल पर अच्छे से समझा चुका हूँ, अब एक बार फिर से बता देता हूँ। आशिका ने वो मैसेज भेजते ही उससे जुड़े सभी लोकेशन सर्वर और एड्रेस को उसी वक्त डिस्ट्रॉय कर दिया था। उस जैसी हैकर के लिए ये बाएं हाथ का काम है, रचित ने जवाब दिया। रचित बिल्कुल ठीक कह रहा है, यहाँ भी मैंने ऐश को काफी बार टेक लैब में काम करते देखा था। हालांकि मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं थी, पर यहाँ भी वो इसी तरीके से काम करती थी। मैंने उसे बहुत बार बहुत से लिंक सॉफ्टवेयर वगैरह डिस्ट्रॉय करते हुए देखा था, राघव ने बताया। एग्जैक्टली, मैं यही कहना चाहता हूँ, रचित ने तुरंत उसकी बात पर सहमति जताते हुए कहा। हैकिंग को अभी भी लोग अनएथिकल मानते हैं और वो अपने पीछे सबूत नहीं छोड़ सकते हैं। एक छोटा सा लिंक भी उन्हें ट्रैप कर सकता है और मुझे नहीं लगता कि ऐश किसी तरह की गलती करेगी। उनकी बातें अभिमान को और भी मायूस कर रही थी और वो उतरे हुए चेहरे के साथ उनकी तरफ देख रहा था। जितना ज्यादा वो आशिका को ढूंढने और अपने वापस करीब लाने के बारे में सोचता, उसे उतनी ही निराशा हाथ लग रही थी। हाँ, इतनी निराशा में ये खबर अच्छी थी कि वो बिल्कुल ठीक थी, पर अभिमान के लिए इतना काफी नहीं था।
रचित ने गहरी सांस ली और उसका मूड हल्का करने के लिए कहा, राघव तुमने नोटिस किया कि आज भी कुछ नहीं बदला है? पहले भी ये ऑफिस में मेरा नाम चिल्लाते हुए गुस्सा होता था और आते ही जब तक मुझ पर इस बात का गुस्सा नहीं निकाल देता था कि मैंने इसकी शादी उस आशिका सिंघानिया से करवा दी, तब तक इसके दिल को सुकून नहीं मिलता था। और आज भी ये आते ही मेरा नाम लेता है, बस फर्क इतना आ गया है कि इस आशिका सिंघानिया के बिना इसका दिल नहीं लग रहा। रिहान को तो इस बारे में कुछ पता ही होगा, क्या उससे कॉन्टैक्ट करने का कोई तरीका मिला? अभिमान ने बात बदलते हुए कहा, उसकी सुई अभी भी आशिका पर ही अटकी हुई थी। मेरे पास पहले भी उसके कॉन्टैक्ट नंबर नहीं थे और जिन आईडी से मैं उन्हें कॉन्टैक्ट करता था वो सब ब्लॉक हो चुकी हैं, रचित ने बुझी आवाज में कहा। हाँ, उसके कॉन्टैक्ट नंबर तो आशिका के मोबाइल में भी नहीं थे। अजीब बात है, उसके फ़ोन में मेरे अलावा किसी के नंबर सेव नहीं थे और ना ही किसी तरह की कॉल हिस्ट्री, जबकि मैंने बहुत बार उसे रेहान से बात करते सुना था, अभिमान ने हल्के हैलत भरे लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर रचित ने उसकी तरफ घूर कर देखा और उसके हाथ पर हल्का सा मारते हुए कहा, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि तुम्हारे पास आशिका का मोबाइल है, यू इडियट। अगर आशिका के मोबाइल में किसी तरह की कॉन्टैक्ट इन्फो सेव नहीं है लेकिन रेहान उसे कॉन्टैक्ट जरूर करेगा ना, तो मुझे अभी उसका मोबाइल दो, मैं कुछ तो ट्रैक कर ही सकता हूँ। वो मेरे पास नहीं है, मिस्टर आशुतोष सिंघानिया के पास है और वो मुझे देने के लिए तैयार नहीं है, अभिमान ने झुंझुलाकर कहा। और आशिका का मोबाइल मिस्टर सिंघानिया के पास क्या कर रहा है? जहां तक मुझे पता है वो उस दिन से बहुत गुस्सा थे जब तुमने उनकी बेटी के बजाय आशिका से शादी की, रचित ने चौंकते हुए पूछा। जल्दबाजी में अभिमान उन्हें आशिका और आशुतोष के रिश्ते के बारे में बताना भूल गया था। उसने सिर्फ रचित और राघव को इतना ही कहा था कि आशिका को उसके डैड आकाश राजवंश लेकर चले गए और इन सब साजिश के पीछे तृप्ति का हाथ था। हाँ, मैं बताना भूल गया था, एक्चुअली दोनों आशिका का नाम मिलना किसी तरह का कोइंसिडेंस नहीं है। मिस्टर सिंघानिया की बेटी जो बचपन में खो गई थी और जिसे सब मरा हुआ समझ रहे थे वो ऐश ही है। उस किडनैपिंग में आशिका की मौत नहीं हुई थी बल्कि तृप्ति उसे दूर ले गई थी, आज नहीं तो कल सच सामने आना ही था, अभिमान ने बताया। उसके चेहरे पर अभी भी वही मायूसी के भाव थे। रचित और राघव ने एक दूसरे की तरफ देखा। रचित उठकर अभिमान के पास गया और उसने उसे बुरी तरह झकझोर दिया था। वो वही लड़की थी जो तुम्हारी बचपन की फ्रेंड थी, वो मिल गई और तुम अब बता रहे हो? तुम बहुत सेल्फिश हो, जब तुम्हें काम होता है तब तुम हमें याद करते हो, और वैसे ये सब कब बताने का सोचा था? रचित ने उसे खा जाने वाली निगाहों से देखा। इतना स्ट्रेस है कि मेरा इन सब में ध्यान नहीं गया, अब तुम प्लीज इससे अपना दिमाग हटाकर इस पर फोकस करोगे कि हम कैसे ऐश के बारे में पता लगाएं, अभिमान ने चिढ़ते हुए कहा। उसने गहरी सांस ली और फिर बुझी आवाज में बोला, वो चाहे कुछ भी कहे, ना तो मैं उसका इंतजार करना छोड़ सकता हूँ ना ही उससे प्यार करना। देखा जाए तो बचपन से उसका इंतजार ही तो कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम और कर लूंगा। ठीक है, फिर मुझे आशिका का मोबाइल ला कर दो, रचित ने सीधे सीधे कहा। अभिमान ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया। वो जानता था कि आशुतोष इतनी आसानी से उसे आशिका का मोबाइल नहीं देने वाले हैं। कॉल पर बात करने का तो बिल्कुल फायदा नहीं होने वाला था, इसलिए उसने आशुतोष से मिलने का सोचा। इस वक्त आशुतोष सिंघानिया ग्रुप के अलावा और कहीं नहीं हो सकते थे। ठीक है, फिर मैं सिंघानिया ग्रुप जा रहा हूँ, अभिमान ने उठते हुए कहा। वो जाने को हुआ, लेकिन अचानक उसने पलटकर राघव की तरफ देखा और कहा, क्या तुम दोनों को सेलिना याद है? वो लड़की जो ऐश की स्टेप सिस्टर थी, वो इन सब में शामिल है, और चाचू का मैसेज आया था कि वो अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाए हैं। हालांकि मिस्टर चौहान इम्पॉसिबल काम को भी देर सबेर कर ही देते हैं, लेकिन शायद उन्हें इसके लिए प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा। राघव, क्या तुम उसे ढूंढने की कोशिश करोगे? राघव ने बिना कुछ कहे उसकी बात पर हामी भरते हुए हल्के से सिर हिला दिया था। अभिमान ने उसे धीरे से थैंक्स कहा और वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ राजवंश एम्पायर में इशिका से मिलने के बाद प्रणय थोड़ा हड़बड़ा गया था। इस वक्त वो अपने वर्कस्पेस में था। इशिका से मिलते ही उसने किसी को मैसेज किया था और उस मैसेज के जवाब में उसके पास कॉल आया था। कॉल रिसीव करने से पहले प्रणय ने इधर उधर देखा। अपने आसपास किसी को ना पाकर प्रणय ने कॉल रिसीव किया और बेहद धीमी आवाज में कहा, मुझे नहीं लगता कि अब आपको और देरी करनी चाहिए, और मैंने आपको पूरे सबूत दे दिए हैं। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि एक महीने पहले हमारी मेन ब्रांच का जो डेटा चोरी हुआ था, उसके पीछे अभिमन्यु राजवंश का ही हाथ था। बस उसने ये किसके जरिए करवाया उसका पता लगाना है, और मैं यहाँ अब और काम नहीं कर सकता हूँ। उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, और वो जिस तरह से मुझे देख रही थी, मुझे यही लग रहा है कि उसकी याददाश्त वापस लौट आई है। मैं बस यही कहूंगा कि आपको अब अभिमन्यु राजवंश के खिलाफ एक्शन ले लेना चाहिए, और साथ ही इशिका, प्रणय बोलते हुए रुक गया था, और अचानक उसके शब्द उसके गले में अटक गए। वो ठीक से सांस तक नहीं ले पा रहा था और उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया था, क्योंकि अचानक से किसी ने उसके कंधे पर आकर हाथ रखा था। प्रणय ने जल्दी से पलटकर देखा तो उसके सामने इशिका खड़ी हुई थी। ओके, आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि जो कोई भी आया है वो इशिका के पीछे नहीं, इस बार अभिमन्यु के पीछे आया है, और कारण भी इस एपिसोड में रिवील हो गया है। चलिए देखते हैं कि इशिका इस मामले में क्या कर पाती है। पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले पार्ट पर मिलते हैं।